नमस्कार, आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। पेश है लखनऊ संस्करण में आज छपी कुछ खास खबरें। सीमा संबंधी विवाद में जमीन की पैमाइश के लिए अब न तहसील का चक्कर काटना होगा, नहीं राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की जी हुजूरी करनी पड़ेगी। राजस्व परिषद ने पैमाइश के लिए आवेदन से लेकर आदेश तक की पूरी कार्यवाही ऑनलाइन कर दी है। परिषद की आयुक्त एवं सचिव मनीषा त्रिघटिया ने समस्त मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित औरैया के पूर्व डीएम सुनील कुमार वर्मा के करीबियों के 3 ठिकानों पर विजिलेंस की टीम ने मंगलवार तड़के छापा मारा। औरैया में दोपहर 12 बजे तक के चली कार्रवाई के दौरान टीमें अपने साथ बालू खनन के पट्टे, जमीन के बैनामे समेत संपत्ति से जुड़े दस्तावेज जब्त कर साथ ले गई है। इस कार्रवाई से आईएएस अफसर के करीबी अधिकारियों और ठेकेदारों में दिन भर खलबली मची रही। पुलिस और विजिलेंस के अधिकारी कुछ भी कहने से बचते रहे। छुट्टा पशुओं से किसानों की मुश्किलों को देखते हुए योगी सरकार इसके स्थायी समाधान के लिए गो अभ्यारण्य योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। शुरुआत में 200 विधानसभा क्षेत्रों में गौशालाएं बनाने की योजना है। प्रत्येक गौशाला की क्षमता 5000 या इससे ज्यादा गोवंश की है। ये बड़ी गौशालाएं सरकारी खाली जमीन, बंजर जमीन और चारागाह पर विकसित की जाएंगी। अगर ऐसी भूमि पर अवैध कब्जे हैं तो उन्हें हटाया जाएगा। पशुधन दुग्ध विकास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने अमर उजाला से खास बातचीत में कहा कि छुट्टा पशु किसानों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। इस समस्या के स्थायी समाधान की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। प्रदेश में बीएससी नर्सिंग में प्रवेश अब नीट के जरिए मिलेगा। इसी सत्र में इसकी शुरुआत हो रही है। पहले चरण में प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दिया जाएगा। हर कॉलेज में 40 सीटें तय की गई हैं। ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया मंगलवार शाम से शुरू हो गई है। पंजीयन 6 अप्रैल को दोपहर 11 बजे तक किया जा सकेगा। 6 को शाम तक मेरिट लिस्ट जारी होगी और 7 को सीट आवंटन किया जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन कराने के प्रशासनिक दावे परीक्षा से 2 दिन पहले ही नकल माफिया ने तार तार कर दिए हैं। उसने नगरा क्षेत्र में डुप्लीकेट कॉपियां बेचना शुरू कर दिया है। यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। 23 मार्च को अखबारों में छपी पर कार्रवाई न होने से नकल माफिया के हौसले बढ़ गए और पेपर लीक करने में कामयाब हो गए। 5 दिन बाद प्रशासन ने 2 स्टैटिक मजिस्ट्रेटों को लापरवाही के आरोप में निलंबित किया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कहा है कि पत्रकारों पर फर्जी मामले दर्ज किया जाना बंद हो और बलिया पर्चा लीक मामले में गिरफ्तार पत्रकार तत्काल रिहा किए जाएं। संस्था ने मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन पत्रकारों को जानबूझकर आरोपी बनाया जिन्होंने सच उजागर किया था। केंद्र सरकार ने 22 और YouTube समाचार चैनलों को प्रतिबंधित कर दिया है। इनमें 4 पाकिस्तान से संचालित हैं जबकि 18 भारतीय हैं। इन सभी चैनलों पर देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने, दूसरे देशों से रिश्ते बिगाड़ने और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली झूठी खबर दिखाने का आरोप है। इन YouTube चैनलों के अलावा 3 ट्विटर, 1 फेसबुक अकाउंट और 1 न्यूज वेबसाइट को भी प्रतिबंधित किया गया है। पिछले साल फरवरी में IT नियमों के अस्तित्व में आने के बाद यह पहला मौका है जब भारतीय YouTube चैनलों को ब्लॉक किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं, फिर भी भारत में तेल कंपनियों ने 15 दिन में 13वीं बार मूल्य वृद्धि करते हुए मंगलवार को पेट्रोल और डीजल पर 80 पैसे बढ़ा दिए। इसे मिलाकर 15 दिन पहले के मुकाबले इनकी कीमत 9.20 रुपये बढ़ चुकी है। जबकि भारत को मिलने वाले कच्चे तेल में 24 मार्च से 1 अप्रैल के बीच ही $14 तक की गिरावट दर्ज की गई है। विपक्ष के 2 नेता मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निशाने पर आ गए। महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद संजय राउत और दिल्ली में आप सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ी कई संपत्तियां ईडी ने अटैच कर ली हैं। दोनों ही नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में कार्रवाई हुई है। विपक्ष ने इसे बदले की कार्रवाई कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी विभागों को 10 सेक्टरों में बांटकर सेक्टरवार लक्ष्य निर्धारण करते हुए कार्य योजना तैयार की जाए। लक्ष्यों को तय करते समय व्यावहारिक और आर्थिक पहलुओं का भी ध्यान रखा जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अमर उजाला आवाज के साथ। नमस्कार।